اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، تُنے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، تُنے دنیا بنائی کیوں، مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں، مطلب جتا، تیرے جلبوں سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے بدی کرتے انسان، تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا غضب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں یہ ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا کام ہے، کیا نام ہے، کیا کام ہے، اے خدا،
दर्शन दे। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित है। उषा दीदी जी गांधीनगर की धर्म प्रेमी भाई बहनों के बीच में आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सभी करतल ध्वनि से उषा दीदी जी का स्वागत करेंगे। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत है। आज टॉपिक यही है, आत्मदर्शन स्थिता प्रज्ञ स्थिति। इस टॉपिक पर आदरणीय उषा दीदी जी प्रकाश डालेंगी। राजयोगिनी उषा दीदी जी।
ओम शांति। श्रीमद् भगवद् गीता में हमने कल एक भूमिका देखी कि जिस भूमिका के अंदर पांडव कौरव की वास्तविकता क्या है, और महर्षि वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने मन की कल्पना का विस्तार किया एक कथा के रूप में। और आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि किस तरह वर्तमान के समय में पांडव भी है, कौरव भी है, और भगवान को भी इस संसार में आना ही पड़ता है क्योंकि घोर अधर्म का युग आरंभ हो जाता है। और इसलिए अधर्म का नाश और सतधर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान को इस संसार में आना पड़ता है। साथ ही साथ वर्तमान समय में हर स्तर की जो समस्याएं दर्शाई है, चाहे व्यक्ति की मनस्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, राष्ट्रीय स्थिति हो या वैश्विक स्थिति हो, परंतु हर स्तर के समाधान, हर स्तर के समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद् गीता में दिया गया है। और वर्तमान की परिस्थितियों का उल्लेख अलग अलग स्वरूप से मनुष्य की मानसिकता को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के महाभारत में बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए श्रीमद् भगवद् गीता की उपयोगिता वर्तमान समय में बहुत अधिक है, इस बात को भी स्पष्ट हमें देखने को मिलता है। और प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन का विषाद योग कि आज की दुनिया में भी अनेक मनुष्य कैसे अवसाद के पेशेंट हो जाते हैं, डिप्रेशन जीवन के अंदर आने लगता है, और किस तरह से नकारात्मक विचारधारा उनकी शुरू हो जाती है, अनेक प्रकार के तनाव से व्यक्ति गुजरता है। और ऐसे समय में जब तक अपने आप को ईश्वर का शिष्य निश्चित न करे तब तक भगवान गाइडेंस कैसे दे। और इसीलिए दूसरे अध्याय में भी जब प्रथम 10 श्लोकों के अंदर अर्जुन अपनी ही व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, तब 11वें श्लोक से लेकर के भगवान बहुत सुंदर उपदेश देना आरंभ करते हैं। उसकी कायरता का वर्णन तो सुन लिया, और उसके बाद भगवान उसको आत्म का ज्ञान देते हैं। और बहुत सुंदर बात जो हमने सुने कि किस तरह से जीवन के अंदर 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, युवा और वृद्ध अवस्था। और इन अवस्थाओं के समय मनुष्य कोई शोक प्रकट नहीं करता है, परिवर्तित अवस्था है जीवन के अंदर भी। परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, इसी तरह दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है, जहां आत्मा का विनाश तो नहीं होता है। और इसीलिए ऐसे सुंदर शब्द में आत्मा का बोध कराना चाहा भगवान ने अर्जुन को, और फिर युद्ध का विधि विधान स्पष्ट करते हैं कि इस समय के अंदर जो मनुष्य जीवन में संघर्ष है, चल रहा है, उस संघर्ष का विधि विधान क्या है। बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। बहुत सुंदर स्पष्ट शब्द में यहां ये बात कही, सुख दुख किससे प्राप्त होता है। सुख दुख की प्राप्ति साधनों से है। आज साधन सुविधाएं हैं तो सुख है, कल वो साधन सुविधा अगर नहीं मिलती है तो दुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह सर्दी गर्मी जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जिस तरह से प्रकृति में असंतुलन आ रहा है, ये प्राकृतिक असंतुलन या बहुत गर्मी या बहुत अति में, हर चीज अति में जा रही है, अति गर्मी हो रही है, अति बारिश आ रही है, अति वृष्टि और अति सर्दी भी हो रही है। और इसी तरह मान अपमान जो व्यक्तियों से प्राप्त होता है, आज किसी व्यक्ति ने बहुत सम्मान दे दिया, कल कुछ हुआ तो वही व्यक्ति अपमान करने में भी देरी नहीं करता है। तो सुख दुख साधन सुविधाओं से, सर्दी गर्मी प्रकृति से और मान अपमान व्यक्तियों से, जीवन के अंदर हर इंसान का संबंध ये तीनों से है, व्यक्तियों से भी है, प्रकृति से भी है और साधन सुविधाओं से भी है। लेकिन अगर साधन सुविधाओं से सुख मिला दुख मिला तो हम अपनी मन चित्त वृत्ति को एडजस्ट कर लेते हैं, परेशान नहीं होते हैं। मान लो कि आज एसी है, सुख मिला गर्मी के दिनों में, लेकिन कल लाइट फेलियर हो जाए, पावर फेलियर हो जाए और एसी होते हुए भी चले ही नहीं तो मनुष्य परेशान नहीं होता है, हाथ का पंखा लेकर के भी शुरू हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है अपनी चित्त वृत्तियों को। ठीक इसी तरह प्रकृति सर्दी गर्मी अति में जाती है तो भी व्यक्ति अपने आप को सेट कर लेता है, अपनी चित्त वृत्तियों को सेट कर लेता है। लेकिन जब कोई मनुष्य मान या अपमान करता है तो वहां उसकी चित्त वृत्तियां सेट नहीं हो पाती है। मान दिया तो बहुत प्रसन्न भी हो जाता है और जब अपमान हुआ तो मनुष्य एकदम परेशान, इतनी उसकी चित्त वृत्ति नेगेटिव हो जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने ऐसा कहा, क्या मतलब आया, परेशान हो जाते हैं। तो इंसानों के साथ ही हमारी परेशानियां हैं आजकल, प्रकृति के साथ सेट हो सकते हैं, साधन सुविधाओं के साथ सेट हो सकते हैं, तो मनुष्य के साथ क्यों नहीं। और वहां भगवान कहते हैं कि जीवन के इस संघर्ष में मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है, सहन करना। अब एक तरफ युद्ध की बात चल रही है और दूसरे अध्याय में ही भगवान उसको सहन करने के लिए कह रहे हैं। अगर सहन करना शुरू कर दे फिर तो युद्ध होवे ही नहीं। तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी महसूस हो रहा है। इसीलिए कहा कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने वर्तमान समय को देखा था कि हर मनुष्य जीवन पर्यंत कितना संघर्ष करता है और उस संघर्ष में कभी कभी सहन करके उस संघर्ष में जीतना होता है। जीतने की कला, जीतने की विधि सहन करके भी होती है। जरूरी नहीं कि हर बार रिएक्शन में आएंगे तभी आप हर संघर्ष को जीत सकेंगे, नहीं। क्योंकि बहुत अच्छा कहा, विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषय आकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना देता है। जल का अपना कोई आकार नहीं है। आप जल को लोटे में डालो, लोटे का आकार ले लेगा। जल को पतेले में डालो, पतेले का आकार ले लेगा। जल को मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्तियों का भी अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस सांचे में अगर हम डालेंगे वैसी हमारी चित्त वृत्तियां होने लगेगी। अगर सकारात्मक सांचे में डाला तो सकारात्मक बनने लगेगी, अगर नकारात्मक सांचे में डाला तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी और हर संघर्ष में हार देखना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सहन करना ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव ऊर्जा को उत्पन्न करती है और रिएक्शन में आना ये नेगेटिव ऊर्जा है। तो हमारी चित्त वृत्तियों को हमें किस आकृति में डालना है, कौन से सांचे में डालना है, सकारात्मक सांचे में डालना चाहते हैं या नकारात्मक सांचे में डालना चाहते हैं, क्योंकि उसी अनुसार हमारी जीवन की क्वालिटी बन जाएगी। जिस आकार में डाला वैसे ही। बहुत सुंदर यहां भगवान कहते हैं अर्जुन को कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। यह कोई स्थूल युद्ध की बात ही नहीं है, किसी को मारने काटने की बात ही नहीं है। ये क्षेत्र, क्षेत्र यानी ये जीवन एक क्षेत्र है कर्म करने का। तो ये जीवन क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। तो जब आत्मा इस जीवन रूपी क्षेत्र में आती है वहीं तो संघर्ष होता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं। महाभारत कोई हिंसक युद्ध नहीं है, यह अहिंसक युद्ध भीतर मनुष्य के भीतर चल रहा है। इसलिए कहा यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाती है और वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। जीवन के अंदर जब ये संघर्ष करते हैं तो ऐसे समय में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसका शमन करना ये समझदारी है। जीवन का संघर्ष अगर जीतना है तो नकारात्मक चित्त वृत्तियों का शमन करना, शांत करना समझदारी है। तब जीवन का संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान व्यक्तिगत जीवन के अंदर समाधान दे रहे हैं। अगर इस बात को यथार्थ रीति व्यक्ति समझ जाए कि जीवन का संघर्ष कैसे करना चाहिए विजयी होने के लिए, तो नकारात्मक वृत्ति का शमन करना, आसुरी संपद को शमन करना, ये विजयी हमें बना देगा। आज अगर आसुरी संपद के वश हो गए तो जीवन का संघर्ष उग्र हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप सभी अनुभवी है कि जब कभी आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हो तो सामने वाला शांत रहेगा, उसको भी डबल गुस्सा आता है। तो आसुरी संपद के आधार पर नकारात्मक चित्त वृत्तियां अगर बन गई तो जीवन का संघर्ष क्या हो जाएगा, युद्ध में बदल जाएगा। और जिंदगी भर उस युद्ध को चलाते रहेंगे और जब भी उस व्यक्ति का चेहरा देखेंगे तो क्या होगा, शांति होगी या मन अशांत होगा, सोचने की बात है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को युद्ध का विधि विधान बताया कि इस युद्ध को जीतने के लिए जिस तरह जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है, ऐसे हमारी चित्त वृत्तियां भी जिस सांचे में डालेंगे वैसे ही हमारे जीवन को बना देंगे। और उसी के आधार पर जीवन का संघर्ष या बहुत उग्र हो जाएगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं वो नकारात्मकता का शमन करो, शांत करो उसको। और नहीं हो रहा है, मान लो कई लोग कहते कि नहीं होता है, तो कहते ऐसे समय पर चित्त वृत्ति को ईश्वर में एकाग्र करो, ध्यान लगा दो परमात्मा में, उसको एकाग्र करो, परमात्मा में स्थित करो। उसी समय जैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा वाला वातावरण हो जाता है, नकारात्मक वृत्तियां सामने उग्र होने लगती है, और उसी समय आप ईश्वर को याद करो, दो मिनट शांत करो मन को, ईश्वर को याद करो, तो क्या होगा, वो गुस्सा शांत हो जाएगा और तभी अंदर में एक धैर्यता आएगी। इसलिए कहा सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष, ऐसी धैर्यता आ जाएगी और इंद्रियां और विषय, विषय माना मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो आरती जब गाते हैं ना, तो आरती में क्या गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते हैं ना, विषय विकार, विषय माना विकृतियां, विकारों के वश जो विषय है वो विकृति उत्पन्न करता है। तो इंद्रियां और विषय दोनों का अगर संयोग हो जाए तो क्या होगा, क्रोध और इंद्रियां, हमारी क्रोध इंद्रियां जब मिल जाती है तो उग्रता हो जाती है, गुस्सा एकदम क्रोध बड़ा स्वरूप ले लेता है। इसी तरह देह अभिमान के संयोग में अगर आ गई इंद्रियां तो अहंकार एकदम उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इसीलिए परमात्मा में जब अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करते हैं, धैर्यता अंदर लाते हैं, तो इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो विकृत विषय हमें व्यथित नहीं कर पाती है। और उसी में से ही अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाते। कितनी सुंदर बात कही है, अमृत तत्व, जीवन के अंदर कुछ बातें जो सीखने को मिलती है, अमृत तत्व जो प्राप्त होते हैं, जब जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती है या ऐसी कोई घटनाएं घटती है, तो उसी में से तो व्यक्ति सीख करके उस अमृत तत्व को प्राप्त करके आगे बढ़ता है जीवन में। मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले माउंट आबू में एक कलेक्टर आए थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया और कहा कि मैंने जब कॉलेज पास किया, एमकॉम पास किया, और एमकॉम पास करते ही मुझे एक बहुत सुंदर बैंक में जॉब लग गई और मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिली। मैं बहुत खुश था, लोगों को नौकरियां मिलती नहीं है, और अभी मैंने एमकॉम पूरा किया और मुझे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल गई। उसने सोचा मैं इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दूंगा कि जरूर मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन भी हो सकता है। वो सपने देखने लगा कि असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनूंगा, मैनेजर से ब्रांच मैनेजर बनूंगा, ऐसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए मैं जीवन में आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है, और इसीलिए साल भर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था अपना, बहुत खुश था अपनी नौकरी से, और बस उसको और कोई बात की तमन्ना नहीं थी, बस जीवन में इसमें प्रगति करते हुए आगे बढ़ जाऊं। लेकिन साल भर के अंदर ही ऐसी घटना घटी कि बैंक में कुछ बहुत बड़ा पैसे का गफला हो गया, और उस पैसे के गफले में सारा इल्जाम इस व्यक्ति के ऊपर आ गया। अब उसको कुछ मालूम ही नहीं, उसने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं और सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। इतनी बड़ी अमाउंट और मैं सोच भी नहीं सकता हूं, और मेरे ऊपर ये इल्जाम कहां से आया यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान होने लगा, आखिर मुझे सबने जबरदस्ती किया और मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। सब पेपरों में, टीवी में, हर जगह मेरे नाम से बदनामी छप गई। मैं बहुत परेशान के जीवन में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया और फिर भी मुझे आज ये देखना पड़ रहा है। सभी परिवार वाले उसको सांत्वना देते रहे कि कोई बात नहीं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इससे भी अच्छी मिलेगी, तुम धैर्य रख थोड़ा। कैसे धैर्य रखूं मैं, सारे न्यूज़पेपर में, सब जगह समाचारों में मेरी बदनामी के ही किस्से आ रहे हैं, सब मुझे उसी नजर से देखते हैं जो काम मैंने किया नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े समय के अंदर सब शांत हो जाएगा और तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएंगी, ऐसे सभी कहते रहे उसको। लेकिन जहां नई नौकरी के लिए जाए वो अप्लाई करे, वही बात सामने आ जाती, कहीं तुम वही तो नहीं है जिसके बारे में इतना छपा था। नहीं भाई, ऐसा व्यक्ति हमें अपने यहां नहीं चाहिए, सब मना करे, सब मना करे, कोई नौकरी मिले ही नहीं उसको, मिले ही नहीं। इतना परेशान और उसकी चित वृत्तियां इतनी नकारात्मक होने लगी, इतने नेगेटिव विचार चलने लगे, और दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, और घर में बैठे 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 इतना विचार नेगेटिव होने के कारण छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा करने लगा। परिवार वाले भी सोचे अभी क्या करें, हादसा ही ऐसा हुआ उसके साथ, धीरे धीरे वो अवसाद का शिकार बनने लगा। घर में बैठे बैठे कोई नौकरी नहीं मिले, कुछ नहीं मिले तो जरूर है, नेगेटिव विचारों का शिकार बनते बनते अवसाद में जाने लगा। उसका एक दोस्त था, वो दोस्त कलेक्टर था। उसको जब पता चला इसकी कहानी तो उसने सोचा कि जरूर ये फंस गया है। वो जानता था उसको, बचपन से दोनों साथ में पढ़ाई करते रहे और कॉलेज तक दोनों साथ में पढ़ते रहे, तो वो अच्छी तरह से जानता था कि ये व्यक्ति तो ऐसा है नहीं, फंस गया है। आखिर उसका कोई उस तरफ जाने का कोई कारण बना तो वो चला गया उसके घर, और जब उसको मिलने गया तो उसकी हालत देखकर उसने कहा ये तुमने क्या अपनी हालत बना दिया है। कहा क्या करूं मैं, कोई नौकरी नहीं है, घर में बैठे बैठे मैं क्या करूं, वही विचार, और जो चीज मैंने किया नहीं आज उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया गया और हर कोई मुझे उसी नजर से देख रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उसके दोस्त ने कहा चलो तू घर में ही बैठा है ना, अभी कोई नौकरी तो है नहीं तेरे पास, तो एक काम कर, हमेशा तुम वैसे भी स्कूल से लेकर के जब तक पढ़ाई किया हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहा, तो एक काम कर मैं आईएएस का फॉर्म लेके आया हूं भर दे। कहा कैसे भरूं मैं, नहीं भरना है मुझे। कर भर तो दे, तेरे माइंड को एक चेंज तो मिल जाएगा, वैसे भी तुम होशियार तो है ही है, तुम इसमें लगाओ अपनी बुद्धि को, नेगेटिव विचार को छोड़ो। बहुत उसने फोर्स किया तो उसने जबरदस्ती वो फॉर्म भरा और आईएएस की तैयारी करने लगा, और आईएएस की तैयारी करते करते सारी एग्जाम एक के बाद एक के बाद एक पास करता गया और आईएएस बन गया। तो कहा आज मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल था कि मैं कभी आईएएस बनने का सोचता ही नहीं था, और मेरी शक्ति और क्षमता ईश्वर को मालूम थी और वो मुझे वहां देखना पसंद नहीं कर रहा था। इतना बड़ा घोटाला नहीं होता था तो मैं उस जगह को छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि मैंने वहीं सपना देखना शुरू कर दिया था कि मैं मैनेजर बनूंगा, ब्रांच मैनेजर बनूंगा, बस यहां तक ही पहुंचना है मुझे, और मेरे अंदर ये तो विचार आता ही नहीं था कि मैं आईएएस का फॉर्म भरूं। कहा ये इतनी बड़ी घटना इसीलिए हुई मेरे साथ में, क्योंकि तभी मैंने छोड़ा उस स्थान को और भगवान जो मुझे देना चाहता था मेरी योग्यता और क्षमता के हिसाब से वो मुझे दिया उसने, आज मुझे पता चला। लेकिन इतना मैं नेगेटिव हो गया था, इतना मैंने अपनी चित्त वृत्तियों को नकारात्मक बना दिया था, उस सांचे में डाल दिया था कि मैं पॉजिटिव सोचना भी बहुत दूर की बात। और इसीलिए आज जब थोड़ा मन को शांत करके आईएएस की तैयारी करते हुए ईश्वर को याद करते हुए एक एक बात मैं करता गया, तो जीवन के संघर्ष में मैं विजयी हो गया और उस अमृत तत्व को प्राप्त किया, उस लेसन को मैंने प्राप्त किया कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें बुरा कुछ भी नहीं होता है, हर चीज के पीछे बहुत बड़ी बात होती है, ईश्वर जब कुछ देना चाहता है तो जरूर कुछ बड़ा ही होता है। इसीलिए कभी भी ये नहीं समझना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा दरवाजा बहुत अच्छा वाला ईश्वर ने खोल के ही रखा है, जहां आप वो अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। तो जीवन के पर्सनल जीवन के संघर्ष में अपनी चित्त वृत्तियों को नकारात्मक नहीं बनाना है, उस सांचे में नहीं डालना है, आसुरी वृत्तियों का नकारात्मकता का शमन करके ईश्वर को याद करते हुए धैर्यता से हर कदम बढ़ाते हुए उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाना है। ये है समाधान, व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष में विजयी होने का समाधान। ये युद्ध का विधि विधान भगवान ने दूसरे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन को समझा दिया, और फिर आत्मा का ज्ञान देते हुए भगवान अर्जुन को कहते ये शरीर ही कर्म करने का क्षेत्र है, इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म के बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं, दस इंद्रियां इस क्षेत्र का विस्तार है और प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र कहा गया। तो कुरुक्षेत्र कौन सा है, वो हरियाणा प्रदेश वाला नहीं, ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है जहां मनुष्य कर्म करता है और किससे विवश होकर कर्म करता है? तीन गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। तीन गुण कौन से हैं? प्रकृति के तीन गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इंसान के लिए ये चॉइस है, ये तीनों में से हमें कौन सा चुनना है जीवन के संघर्ष में? सात्विक गुणों को चुनना है, राजसिक गुणों को चुनना है या तामसिक गुणों को चुनना है? उसी के आधार पर कर्म करना है, कौन से गुणों को लेकर के कर्म करना है, ये चॉइस हमारा अपना होता है। जिन गुणों को हम चुनेंगे, हमारा जीवन या हमारा कर्म क्षेत्र वैसा हो जाएगा। आप अगर सात्विक गुणों को लेकर के जीवन के अंदर आएंगे, ये कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो संस्कार वैसे बनने लगेंगे सात्विक, और उससे आपका जीवन का संघर्ष शायद बहुत सहज हो जाएगा, सुकून देने वाला होगा। लेकिन अगर तामसिक गुणों को लेकर के कर्म क्षेत्र में आए, तो जीवन के अंदर जो संस्कार है वो भी तामसिक होंगे, और उससे जीवन का संघर्ष हर समय टेम्पररी अगर विजय का अनुभव कराता भी है, लेकिन आखिरन में हार का ही अनुभव कराता है। ये बहुत सुंदर महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी प्रकट करते हैं कि एक तरफ पांडव सात्विक गुणों को लेकर चल रहे हैं, दूसरी ओर कौरव तामसिक गुणों को लेकर के चलते हैं, और जीवन का संघर्ष कौरव के लिए कितना कठिन होकर के अंत में हार, सदा की हार हो जाती है, और पांडवों के सामने मुश्किलें आती है, बातें आती है, लेकिन अंतिम विजयी निश्चित है। सात्विक जीवन पद्धति कभी भी दुख और अशांति का अनुभव नहीं कराएगा। सात्विक जीवन पद्धति हमेशा अंत में सुकून का ही अनुभव कराता है। लेकिन आज के समय के मनुष्य की मनोवृत्ति क्या हो गई है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और उस इंस्टेंट रिजल्ट के कारण तामसिक प्रकृति को अपना लेता है। तामसिक प्रकृति कहो, नकारात्मक प्रकृति कहो, और नकारात्मक प्रकृति में उस सांचे में अपने आप को डाल देते तो जीवन की परेशानी बढ़ जाती है, टेंशन, अवसाद, नेगेटिविटी सब बढ़ जाता है, और जीवन की क्वालिटी क्या हो जाती है? संघर्ष, बाहर संघर्ष में भले जीत वाला अनुभव करता है, लेकिन अंदर में कभी सुकून का अनुभव नहीं कर सकता है, चैन की नींद नहीं ले सकता है, शांति नहीं हो सकती है। दसों बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसको डायबिटीज बढ़ जाएगा, सब हो जाएगा, तो फाइनल क्या होगा, हार या जीत? इसीलिए कहा भगवान ने कि ये शरीर ही कर्म करने का क्षेत्र है, इसमें बोए गए भले व बुरे कर्म के बीज संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां यह क्षेत्र का विस्तार है, और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा गया है। इसीलिए कितना सुंदर स्पष्ट दूसरे अध्याय में स्पष्ट कर दिया कि ये कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं, वो कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश का मैदान की बात ही नहीं, जीवन रूपी कुरुक्षेत्र की बात है। फिर आत्मा का ज्ञान देते हुए भगवान बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहते कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, यह अविनाशी, शाश्वत और आदियुगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है। प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गुणों के द्वारा इनकी चमक बढ़ती है, और विकारों के द्वारा इनकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंस कर यह कमजोर होता है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर वह शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए कहा अग्नि उसको जला नहीं सकती है, तलवार उसको काट नहीं सकती है, पानी उसको भिगो नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती है। प्रकृति के कोई भी तत्व आत्मा को कहीं भी इफेक्ट में नहीं ला सकती है। न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी भिगो सकती है। माना आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, ये प्रकृति के पांचों तत्व से ऊपर है। चैतन्य शक्ति है, ऊपर है, और इसीलिए प्रकृति के कोई तत्व उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इफेक्ट कौन करता है? तो कहा गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि हर इंसान के चारों ओर एक ओरा होता है, एक प्रभा मंडल होता है। जैसे देवी देवताओं के आगे चारों ओर एक सफेद प्रभा मंडल में उसको दिखाते हैं, पवित्र प्रभा मंडल। इसी तरह हर इंसान के आसपास भी एक प्रभा मंडल होता ही है, लेकिन जितना व्यक्ति सात्विक होता है या सद्गुणों के आधार पर चलता है, उतना उसका प्रभा मंडल, उसका एनर्जी लेवल हाई माना जाता है, उच्च माना जाता है। और जितना व्यक्ति विकृतियों के वश होता है, विकारों के वश होता है, नकारात्मकता के वश होता है, उतना उसका प्रभा मंडल भी बहुत छोटा हो जाता है और डार्क कलर का होता है। कुछ समय पहले मेरे पास में एक बहन आई थी, उसको कुछ पेट की तकलीफ थी। कई डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टर सारे रिपोर्ट बताए, रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर बैंगलोर से वो बहन आई थी, तो उस बहन को पता चला कि बैंगलोर में कहीं ओरा क्लेंजिंग की कोई ऐसी थेरेपी है। उसके पास गई और उसके पास उसने फोटो, वो पहले फोटो खींचते हैं कि कौन सा ओरा उसका डैमेज है। तो जैसे ही वो फोटोग्राफिक उसका पिक्चर निकला, तो उसमें दिखा गया कि चारों ओर जो उसका प्रभा मंडल है अलग अलग कलर का है, और उसके पेट के आसपास जो प्रभा मंडल है उसका कलर बहुत डार्क था। वो उसने मेरे को सारे फोटो वोटो सब दिखाए, तो कहा कि मेरे को उस डॉक्टर ने कहा कि ये जो कलर है उसके हिसाब से आपके नेचर में ईर्ष्या है। ये कलर बताता है कि आपके प्रकृति के अंदर ईर्ष्या बहुत है, और वो ईर्ष्या के कारण जब भी आपको ईर्ष्या आती है किसी के लिए भी, तो आपका नाजुक स्थान जो है शरीर के अंदर पेट का हिस्सा है, इसीलिए वो पेट के ऊपर इफेक्ट करता है कि पेट नरम हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ईर्ष्या के कारण। जो हिस्सा कमजोर होता है उसी पर वो प्रभाव डालता है, ऐसे वो डॉक्टर ने उसको समझाया। तो कहा फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा आप अपने नेचर क्योर करो। नेचर क्योर माना अपने अंदर जो ईर्ष्या का नेचर है उसको सुधारो। तो कहा इसको कैसे सुधारना होता है? तो कहा कोई टाइप का मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में पॉजिटिव थिंकिंग आप करो, और पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपना नेचर क्योर करो। इसलिए वो माउंट आबू आई, हमसे मिली, सारा उसने किस्सा सुनाया कि मुझे मेडिटेशन सीखना है और मैं छुट्टी लेकर घर से आई हूं, एक महीना मुझे मेडिटेशन करना है यहां रह करके। ठीक है, उसको छुट्टी मिली थी, वो एक महीना रही, रोज मेडिटेशन अमृत वेले उठ करके सुबह सुबह 4 बजे से मेडिटेशन आरंभ करती थी, और अपने विचारों का शुद्धिकरण करने लगी, अपनी चित्त वृत्तियों को उस सकारात्मक सांचे में डालना शुरू किया उसने, और उस ईर्ष्या के नेचर को उसने धीरे धीरे खत्म किया। यही ज्ञान का एप्लीकेशन, जो आध्यात्मिक ज्ञान का एप्लीकेशन उसने किया कि हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, मैं किसी को क्यों देखूं? भगवान ने जो मुझे विशेषता दी है उस विशेषता के हिसाब से मुझे चलना है। और इस समझ को अप्लाई करते हुए अपने जीवन के अंदर उसने उस संस्कार का परिवर्तन किया, और संस्कार का परिवर्तन करते ही उसकी पेट की जो बीमारी थी वो धीरे 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 खत्म हो गई। एक महीने के बाद वो जाकर के फिर से अपना ओरा स्कैनिंग कराती है, और उसमें पता चला, डॉक्टर ने पूछा, इतना जल्दी एक महीने के अंदर रिजल्ट आ गया कि वो सारा डार्क कलर जो था वो खत्म हो गया। फोटोग्राफिक उसने फिर मेरे को भेजा कि देखो ये मेरा फोटोग्राफ पहले का जो था और ये अभी का जो था, एक महीने के अंदर मैंने अपना नेचर क्योर कर दिया। और सकारात्मक सांचे में अपने आप को ढाल दिया, और मेरी जो तकलीफ थी पेट की वो भी ठीक हो गई। अभी मेरे को कोई दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कहने का भावार्थ मेरा यह है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा का ऐसा प्रभा मंडल होता है, ऑरा जिसको कहते हैं। और आजकल दुनिया के अंदर ये ऑरा के विषय में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। इसीलिए व्यक्ति का जितना सात्विक नेचर होता है उतना उसका प्रभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है, लाइट कलर होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। और जितना व्यक्ति नकारात्मक होता है उतना उसका प्रभा मंडल नेगेटिव होता है और डार्क कलर का होता है, और वो खुद को तकलीफ ज्यादा देता है। वो ऑरा से खुद को तकलीफ ज्यादा देता है क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा अनेक प्रकार के नकारात्मक जो होने वाली चीज है उसको आकर्षित करता है। जैसे कई बार आप लोग ने अनुभव किया होगा, जीवन में मुसीबत पर मुसीबत, एक पूरी नहीं होती दूसरी आती, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी आती, तीसरी पूरी नहीं होती चौथी आती, कहते पता नहीं क्या लगा पड़ा है, कहते हैं ना, अनुभव किया है ना। जब हमारा नकारात्मक ओरा बढ़ जाता है तो हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं चीजों को खींचते हैं, तो मुसीबतों का आवाहन करते हैं। वो हमारी नकारात्मकता मुसीबतों का आवाहन करती है। और कभी आपने जीवन में अनुभव किया होगा, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, एक के बाद दूसरी खुशखबरी मिलती जा रही है और आप खुशी। तो जितना व्यक्ति का सकारात्मक सात्विक प्रकृति होती है, सात्विक प्रभा मंडल होता है, उतना वो अच्छी चीजों को आकर्षण करता है, उसको खींचता है, अच्छा ही अच्छा को खींचता है। और उसके बाद आपके जीवन में खुशी खुशी हर चीज आपको अच्छा समाचार देती है। तो व्यक्ति खुद जिम्मेवार है उसके जीवन में मुसीबत है या उसके जीवन में प्रॉब्लम है या उसके जीवन में अच्छाई है, अच्छी घटनाएं जो घटती है वो उसी के कारण है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहता है कि जीवन के संघर्ष को सहज करने के लिए तुम अपनी प्रकृति को इतना सात्विक बना दो तो हर अच्छी चीज तुम्हारे पास आकर्षित होकर के आएगी, वो प्रभा मंडल खींचेगा, वो ऊर्जा का स्तर, वो वाइब्रेशन खींचेगा। और जितना आपका नेचर नेगेटिव होगा तो हर मुसीबत वन आफ्टर दी अदर जो जीवन के संघर्ष को और भी कठिन बना सकता है। इसीलिए जीवन के संघर्ष में विजयी होना है तो सात्विक प्रकृति जितनी होगी तो हमारा जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा, जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और हर अच्छी घटना को आप जीवन के अंदर आकर्षित करेंगे। और जितनी आपकी सोच नेगेटिव है, जितनी आपकी चित्तवृत्तियां नकारात्मक विकारों के वश है, उतना आपका प्रभा मंडल हर प्रकार की मुसीबत को खींचेगा। और वो मुसीबतें एक के बाद एक शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव डालेगा बीमारी के रूप में। कई बार आपने सुना होगा कि भाई कोई व्यक्ति सोचता है मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, भाई कैंसर जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी बीमारी हो चलेगा, कैंसर। एक बहन थी, हमेशा यही कहती थी, कैंसर नहीं होना चाहिए कैंसर, लेकिन इतना नेगेटिव सोचती थी, इतना नेगेटिव सोचती थी, तो धीरे धीरे उसने उस बीमारी को आवाहन किया सोच में और उसको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया बहुत डर गई कि अब तो मैं खत्म, उसको यही हुआ, और तड़प तड़प के मरूंगी मैं, ये उसके विचार चलने लगे। आखिर उसका भाई, एक कजिन ब्रदर उसका डॉक्टर था, उसने कहा बहन ये हमारे घर में तो किसी को जीन्स तक नहीं है कैंसर के, फिर भी तुझे ये बीमारी कैसे हुई, क्योंकि तू हमेशा सोचती थी कैंसर नहीं होना चाहिए कैंसर नहीं हो, और उसके लिए तुम जो नकारात्मक सोचती थी ना उसी ने उस बीमारी को खींचा है और आज तुम उसी का शिकार बनी है। इसीलिए आज के बाद तुम अगर ये सोचेगी मर गए अभी तो खत्म हो गए तो वही होगा। इसीलिए आज से तुम अच्छा सोचना शुरू करो कि मैं इतना स्वस्थ हूं, मैं इतना खुशकिस्मत हूं, मैं इतना प्रफुल्लित हूं, खुश रहो और अच्छे विचार करो, देखो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। और सचमुच ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है कि उसने सकारात्मक सोचना चालू किया और सकारात्मक सोचते धीरे धीरे खुश रहने लगी, प्रफुल्लित रहने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सचमुच वो कैंसर के सेल भी खत्म हो गए, उसके जीवन में से समाप्त हो गए। तो मनुष्य अपनी सोच से कैसे नकारात्मकता का जितना आवाहन करता है, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में, चाहे वो जीवन के संघर्ष के रूप में, घटनाओं के रूप में, वो हो करके रहता है। और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम नकारात्मक सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक बार एक भाई थे, उसको चार बेटे थे, चारों बेटे बहुत अच्छे आज्ञाकारी एकदम, आज के युग में ऐसे आज्ञाकारी बेटे कहां मिले, और इतने माँ बाप की सेवा करने वाले, जो कोई आता था देखता था वो बच्चों को कि चारों बेटे इतने आज्ञाकारी और माँ बाप की हमेशा सेवा करने वाले, तो लोग भी कहते थे आप बड़े भाग्यशाली हो, बहुत पुण्य किया है जो ऐसे बेटे मिले आपको, एक से एक रतन मिला है जो आपकी सेवा करने में सदा तत्पर रहते हैं। तो वो भाई की यही मेंटालिटी थी, बेटे तो होते ही सेवा करने के लिए, बेटे तो होते ही सेवा करने के लिए। अब उसकी पत्नी जो थी वो हमेशा कहती थी अरे मैं तो किसी से सेवा लेनी नहीं है, चलते चलते चले जाएं, और सचमुच ऐसा हुआ, वो चलते चलते चली गई। और ये चारों बेटे की शादी किया, चारों बेटे की बहुएं जो आई, बहुएं इतनी अच्छी, घर में जैसे स्वर्ग लगा पड़ा, बहुएं एक दूसरे के साथ मिलकर के चले, सारे लोग आकर के उस बुजुर्ग को कहते थे आपके बेटे तो थे ही हीरे, लेकिन बहुएं भी इतनी अच्छी आई जो घर को स्वर्ग बना दिया, इतनी सेवा करने वाली बहुएं मिली आपको, सभी यही, तो वो बुजुर्ग यही कहता था बेटे बहू तो होते ही सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करना उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है, वो तो होते ही सेवा करने के लिए। अब धीरे धीरे वो बच्चे तो कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, एक बेटे के साथ वो रहता था बुजुर्ग भाई, और उसके बेटे बहू खूब आज्ञाकारी सेवा करने वाले, सेवा बहुत अच्छी सेवा करते रहे। अब वो भाई को बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी लगी जो खटिया में ही सब कुछ होने लगा, सभी देखते थे कि बेटे बहू इतनी सेवा कर रहे हैं, खटिया में सब कुछ हो रहा है, फिर भी इतनी सेवा करके साफ रखना, उनको अच्छी तरह से रखना, कहीं कोई बात के उसको तकलीफ नहीं होती है, ये देखते थे। जो भी आते थे कहते थे कि आप बड़े भाग्यशाली है कि आज के युग में ऐसे बेटे बहू आपको मिले इतनी सेवा करने वाले, नहीं तो आज कौन किसकी सेवा करता है। तो वो कहने लगा बेटे बहू तो होते ही सेवा करने के लिए हैं। आखिर उसके बेटे ने कहा पिताजी हमें सेवा करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंसान सेवा कब करता है, इंसान सेवा तब करता है जब कोई बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो आप तकलीफों का आवाहन कर रहे हैं। बेटे बहू होते ही सेवा के, आपने देखा माँ ने कहा कि किसी से एक गिलास पानी तक लेने की सेवा नहीं करनी, वो ऐसे ही चलते चलते चली गई। और आप जितनी बार ये कहते हैं कि बेटे बहू होते ही सेवा कर ले, हमें सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं है, हमारा सौभाग्य हम समझते हैं, लेकिन जो भोगना है वो तो आपको भोगनी पड़ रही है। आप कितना नकारात्मकता का आवाहन कर रहे हैं, कई बार हम सोचते भी नहीं है कि हम नकारात्मक बोल रहे हैं कि बेटे बहू होते ही सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करना उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है। लेकिन सेवा कब करेंगे? जब व्यक्ति तकलीफ में होगा तभी तो सेवा करें, तो आप तकलीफों का आवाहन कर रहे हैं। तो नकारात्मक सांचा, जितना व्यक्ति नकारात्मक सोचता जाता है उतनी तकलीफों को खींचता जाता है अपने जीवन के अंदर, और उसका जीवन का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। ये भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना नेगेटिव सोचने लगा और कहा मुझे युद्ध करना ही नहीं है, और युद्ध करना ही नहीं है, और नेगेटिव सोच करके उसने अपने आप को नेगेटिव सांचे में डालना शुरू किया था। इसीलिए भगवान कहते हैं जितना तुम अपने आप को नेगेटिव सांचे में डालेगा, चित्त वृत्तियां वैसी होने लगेगी, और चित्त वृत्तियां वैसी होने के साथ साथ तुम्हारा जो प्रभा मंडल है वो प्रभा मंडल हर नकारात्मक घटना को आकर्षित करेगा, जिसका प्रभाव तेरे शरीर के ऊपर तो क्या, तेरे मन के ऊपर, तेरे जीवन के आसपास वही मंडराना शुरू हो जाएगा, और जीवन के अंदर जो संघर्ष तेरा है वो बढ़ जाएगा। कितनी सुंदर बात यहाँ दूसरे अध्याय में भगवान हम सब अर्जुनों को समझाते हैं कि जीवन के संघर्ष को कष्टदायी मत बनाओ, अपने सकारात्मक सात्विक प्रकृति को या सद्गुणों का द्वारा अपने ओरा का, अपने प्रभा मंडल को विकसित करो, जिस प्रभा मंडल से आपके आसपास हर अच्छी चीज होने लगेगी, हर अच्छी घटनाओं को आप आकर्षित करेंगे, और आपका जीवन सुकून से, खुशियों से, एक के बाद एक अच्छे समाचार मिलने लगेंगे, एक के बाद सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप प्रैक्टिकल अनुभव करके तो देखो, ये अनुभव करके देखो, ये वाइब्रेशन थियरी है, और आजकल दुनिया में ये वाइब्रेशन थियरी के ऊपर बहुत कुछ काम हो रहा है। तो हर मनुष्य के वाइब्रेशन पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को आकर्षित करती है, जैसा जिसका जो वाइब्रेशन होता है, तो जीवन का संघर्ष वैसा ही हो जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने शरीर धारण किया है उसे यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। अर्जुन का जो मोह उत्पन्न हुआ था, जिस कारण उसको भय लगने लगा था कि मेरे बच्चे चले गए तो मैं अकेला क्या करूं, तब भगवान आत्मा का ज्ञान कितना सिंपल शब्द में कहते कि आज हर कोई नए वस्त्र धारण करते हैं तो पुराने वस्त्र को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, पुराने के ऊपर तो नया नहीं पहन सकते हैं ना, लॉजिक है ये। तो इसी तरह आत्मा तो अविनाशी है, और आत्मा नए वस्त्र को धारण करती है, पुराना छोड़ती है तो नया धारण करती है, ये एक शाश्वत नियम है। इस तरह से व्यक्ति जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आता जाता है। तो सिंपल शब्द में आत्मा का ज्ञान देते हुए फिर 31वें श्लोक में उसको स्वधर्म का परिचय कराता है और कहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि यह धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। यहां स्वधर्म किसको कहा, तो कहा आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। इसलिए कहा हर चीज का अपना एक गुण धर्म है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को स्टोव पर रख दो, उसको उबालना शुरू करो, पानी एकदम खौलने लगे, उबलने लगे, और उसी समय अगर कहीं आग लग जाए और आपके पास और कुछ नहीं है, वही उबलता हुआ पानी है, उड़ेल दो, वो आग बुझ जाती है। पानी को कितना भी गर्म किया तो आग भड़काती नहीं है, आग को बुझाने का ही काम करती है, वो अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ती है। ठीक इसी तरह हर आत्मा का भी अपना अपना गुण धर्म है, चाहे सात्विक गुण धर्म हो या तामसिक गुण धर्म में रहकर कर्म करते हो, लेकिन जिसके अंदर सात्विक प्रकृति जिसने विकसित की है और आत्मा के गुण धर्म में जो स्थित है, तो वह उसको भय करने की जरूरत नहीं है। जीवन के अंदर आत्मा की पोटेंशियल, आत्मा की शक्ति क्षमता बहुत अधिक है। जिस तरह से हर चीज का अपना गुण धर्म है, ऐसे आत्मा का भी स्वधर्म है। लेकिन जब ये बात सुनते तो लोगों ने क्या समझाया, गीता में हमें यही कहा कि भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की याद रखे, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। अगर क्षत्रिय धर्म की स्मृति दिलाई तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए। अगर सारी मानव जाति के लिए, तो मानव का गुण धर्म कौन सा है? और जो गुण धर्म में स्थित हो जाएगा तो उसको भय करने की जरूरत नहीं। आज हर छोटी बात के लिए लोग क्या कहते, बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। कभी कोई व्यक्ति से डर लगता है, कभी कोई परिस्थिति से डर लगता है, कभी कोई घटना से डर, बहुत डर लगता है। कभी कोई व्यक्ति उसे डर लगने लगना, बड़ा डर लगता है इस व्यक्ति से, है ना? तो जीवन का संघर्ष क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डर माना नकारात्मकता, और नकारात्मकता को अगर खींचा तो जीवन का संघर्ष तो विकट हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, इतना गुण धर्म की पोटेंशियल आत्मा में है तो इस धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। इस सद्गुणों के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर तुम युद्ध करो, ये तुम्हें कल्याणकारी मार्ग पर ही ले जाएगा, तुम्हारा अकल्याण होने नहीं देगा। किंतु यदि तुमने ये युद्ध नहीं किया तो स्वधर्म को भी खो देगा, और उससे जो कीर्ति प्राप्त हो रही है उसको भी खो देगा, और पाप को प्राप्त करेगा, पाप की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि एक है स्वधर्म, एक है परधर्म। इसीलिए गीता में कहा स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख का कारण है। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है और परधर्म किसको कहा, उसको अगर हम देखें, आज सवेरे के सत्र में भी हमने देखा कि शरीर और आत्मा दो चीज है, कि जब ये शरीर और आत्मा का संयोग हुआ तब जीवन हुआ, लेकिन इस जीवन के अंदर आत्मा की वास्तविकता क्या है, आत्मा का गुण धर्म क्या है, तो कहा आत्मा का गुण धर्म सात गुण है। जिस तरह इंद्रधनुष में सात रंग है, जिस तरह संगीत में सात स्वर है, ठीक इसी तरह आत्मा के भी सात गुण है। और ये आत्मा के सात गुण उसके जीवन को इंद्रधनुष के रंगों से भर देता है, संगीत के सातों स्वर से उसका जीवन इतना तरंगित कर देता है, म्यूजिकल बना देता है, सुंदर बना देता है। उसमें सबसे पहला है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। क्यों आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है? क्योंकि आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और ये अहंकार जब टकराता है तो कितने प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान माना आध्यात्मिक प्रज्ञा। आध्यात्मिक प्रज्ञा जब प्राप्त होती है जीवन के अंदर तो अंतर चक्षु खुलते हैं। और जब वो अंतर चक्षु खुलते हैं तो उससे हर चीज में वो डिविनिटी को देखते हैं, वो दिव्यता को देखते हैं। हर एक के अंदर वो चैतन्य शक्ति आत्मा देखना आरंभ करते हैं, आत्मिक भाव में स्थित हो जाते हैं और व्यक्ति की प्रकृति सात्विक होने लगती है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान आज के युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दिव्य चक्षु खुलते नहीं है। ये दिव्य चक्षु खोलने का मुख्य आधार है। और जब दिव्य चक्षु खुलता है तो अहंकार का शमन होता है, अहंकार शांत हो जाता है। और वो आध्यात्मिक प्रज्ञा अंतर चक्षु को खोलते हुए हर व्यक्ति को जब देखते हैं तो आत्मिक भाव से देखते हैं, आत्मिक भाव से व्यवहार में आते हैं, तो जीवन बहुत सुंदर सरल हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। आज दुनिया का जितना भी ज्ञान व्यक्ति ने हासिल किया उसने उसके ईगो को ही इन्फ्लेट किया है, ईगो को ही बढ़ावा दिया है। और उस ईगो को जितना बढ़ावा दिया उतना जीवन के अंदर क्या हुआ? मतभेद, स्वभाव भेद, हर बात में भेद आना चालू हुआ, जिस कारण से जीवन का जो स्वरूप है वो कभी कभी लोग उस जीवन को नष्ट कर लेना चाहते हैं, ऐसा जीवन का स्वरूप बना दिया है उस अहंकार ने। अहंकार जब टकराता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक प्रज्ञा जब प्राप्त होती है, स्पिरिचुअल विजडम जब प्राप्त होती है तो समाधान ही समाधान है। जीवन में कोई भी प्रकार की मुश्किलें नहीं है, समाधान आने लगता है। इसीलिए यह आध्यात्मिक ज्ञान अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है जीवन के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ पवित्रता, आत्मा का निज स्वरूप निर्मल है, पवित्र है, गंगा की तरह एकदम निर्मल है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना निर्मल है, उसका ओरिजिनल स्वरूप आप देखो। हम सब का ओरिजिनल स्वरूप जब हम पैदा हुए थे तो वही निर्मल स्वरूप था, ये हमारा गुण धर्म था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में बढ़े, इतनी इम्प्योरिटी को हमने आकर्षित कर लिया अपने प्रभा मंडल के अंदर कि आज वो निर्मलता, वो पवित्रता समाप्त हो गई। इसलिए जीवन में कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। जहां अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, आध्यात्मिक प्रज्ञा हो, जहां पवित्रता को फिर से आकर्षित करो जीवन के अंदर, वहां आप देखेंगे वो ऊर्जा ऐसी बनने लगेगी जो प्रेम हर एक के प्रति, वो निर्मल प्रेम की गंगा बहने लगेगी। तभी दुनिया में लोगों ने कहा ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन अफसोस आज के युग में ढाई अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ सके, क्योंकि प्रेम के बदले क्या आ गया? प्रेम के बदले आसक्ति आ गई, हर चीज में मेरापन, स्वार्थ। और वो स्वार्थ के कारण ही आज कई प्रकार के झगड़े होते हैं। मेरेपन का भाव, मेरा अधिकार, तो लस्ट उसको कहा, प्रेम नहीं है, अशुद्धि है। और वो अशुद्ध आसक्ति व्यक्ति के जीवन के अंदर हर प्रकार की परेशानी का कारण बन जाता, प्रेम के बदले मोह आ गया है। मोह जब से आया है, प्रेम रखो अपने बच्चों से। कई लोग पूछते क्या हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं करना? जरूर करो, प्यार तो करो, प्रेम रखो। मोह गलत है, विकृति है। जब प्रेम अति में चला जाता तो वही विकृत स्वरूप मोह कहलाता है। प्रेम रखो ना, कौन मना करता है? प्रेम तो सुंदर है, लेकिन जब वो मोह में परिवर्तित हो जाता है, अति में चला गया प्रेम, तो मोह मेरा अधिकार है इसके ऊपर। मैं जैसे कहूं वैसे ये करना चाहिए, चलना चाहिए, उसके हिसाब से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, तो क्या होगा? वो नहीं करेगा तो तकलीफ किसको होगी? आप अनुभवी है, आपको ही तकलीफ होती है। प्रेम रखो, और जितना प्रेम रखेंगे वो सकारात्मक ऊर्जा उसको भी सकारात्मक बनने की प्रेरणा देगा, तो तकलीफ नहीं होगी। कोई भी चीज अति में जाता है तो विकृत स्वरूप हो जाता है। तो प्रेम जब अति में जाता है तो वो विकृत हो जाता है, मोह कहलाता है। पवित्रता जब अति में जाती है तो अपवित्रता जीवन के अंदर इस तरह से आने लग, पवित्रता क्षीण हो गई, अपवित्रता बढ़ गई। लस्ट, इसीलिए उसको लस्ट कहलाता है। काम विकार, कामनाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और ज्ञान अहंकार में परिवर्तित हो गया। तो जहां विकृति आई तो स्वरूप ही बदल गया। तो ज्ञान अहंकार में बदल गया, पवित्रता काम में बदल गई, और प्रेम मोह में बदल गया, और शांति टेंशन में बदल गई। आज शांति कहां है? टेंशन, टेंशन उसका विकृत स्वरूप टेंशन बन गया, अवसाद बन गया, नेगेटिव थिंकिंग होकर के शांति खत्म हो गई। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? शांति तो चाहिए। बड़ों को भी शांति चाहिए तो बच्चों को भी शांति चाहिए। एक बार मेरा कार्यक्रम था यही अहमदाबाद में, तो कार्यक्रम को थोड़ी देर थी, सेंटर पर था कार्यक्रम, हम बैठे थे, लोग आ रहे थे धीरे धीरे, अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। उतने में फोन बजा, लैंडलाइन थी तो मैं स्वाभाविक वहां ही बैठी थी, तो मैंने फोन उठाया। सामने से एक बच्चे की आवाज थी। बच्चे ने पूछा ये ओम शांति है? मैंने कहा ओम शांति है। बच्चे ने पूछा दीदी आज वहां कोई प्रोग्राम है? मैंने कहा प्रोग्राम है। बच्चे ने कहा दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे? मैंने कहा आपको बात करनी है, बुलाऊं? कहा नहीं, बात नहीं करनी है। तो मैंने कहा फिर? तो कहा मेरे मम्मी पापा वहां आए हैं, आप उनको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमको टेंशन होता है। बच्चों को भी शांति चाहिए। एक समय था जब माँ बाप शिकायत करते थे कि बच्चे बहुत लड़ते हैं, उनको शांत कैसे किया जाए। आज वो समय आ गया है, बच्चे शिकायत करते हैं, माँ बाप बहुत लड़ते हैं, उनको शांत कैसे किया जाए, वो सिखाया जाए उनको, ये समय आ गया है। इसीलिए कहा कि आज दुनिया विकृति के तरफ अति में जा रही है। जब विकृति अति में पहुंच जाती है तो व्यक्ति का जीवन नरक जैसा हो जाता है। तो सुख शांति समाप्त, आनंद समाप्त, आत्मा का स्वरूप है ही सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है, लेकिन वो आनंद ही नहीं रहा जीवन के अंदर, और इसीलिए शक्ति नहीं, क्योंकि ये सारी शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, ये सारी शक्तियां हैं। इसलिए भगवान के पास जाकर क्या मांगते? हे प्रभु शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्म शक्ति चाहिए। और ये सातों गुण ये हमारा स्वधर्म है। तो स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म कौन सा? ये सात गुणों से पर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या और नफरत। ये सात अवगुण ये पर धर्म है। ये पर धर्म दुख का कारण है और ये हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। और जितनी नकारात्मक ऊर्जा हमारी बढ़ती जाती है, प्रभा मंडल क्षीण होता जाता है, उतनी मुसीबतों का आवाहन हम जीवन के अंदर कर। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जीवन का संघर्ष तुम्हारा इतना बड़ा क्यों हो गया है, महाभारत का रूप क्यों ले रहा है, आज घर घर के अंदर महाभारत क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि जीवन का संघर्ष में नकारात्मकता का आवाहन हमने बहुत अधिक कर लिया है। इसीलिए तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं कि अच्छा ये सात गुण जीवन में लेकर के हम चले, लेकिन दुनिया में तो लोगों के जीवन में ये सात गुण है ही नहीं, अवगुण ही है, पर धर्म के आधार पर जीवन जी रहे, वो हमारे जीवन को भी नकारात्मक बना देते, तो हम अपनी बैटरी चार्ज करके करेंगे क्या? ये सात गुणों से बैटरी चार्ज करने की बात है, लेकिन अगर हम अपनी बैटरी चार्ज करें लेकिन दुनिया तो नेगेटिव है, वो हमारी बैटरी भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं, तो फायदा क्या हुआ चार्ज करने का? कई बार कई लोग वैसे भी कहते हैं आज दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक को हमने देखा, या मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी को देखा, इन सभी महान हस्तियों के जीवन में विशेष बात कौन सी थी? तो इन सभी ने अपनी बैटरी फुल चार्ज किया था सातों गुणों से। हर एक के जीवन में देख लो, स्वामी विवेकानंद के जीवन में देख लो, महावीर स्वामी के जीवन में, महात्मा बुद्ध के जीवन, सभी के जीवन में देखो, बैटरी फुल चार्ज थी। आध्यात्मिक प्रज्ञा थी, आध्यात्मिक ज्ञान था, पवित्रता थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था और शक्ति थी। ये सातों गुणों से भरपूर थी बैटरी, फुल चार्ज। किसी ने उनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन उनके संग में जो आए उनकी बैटरी भी चार्ज होने लगी। उनकी बैटरी किसी ने डिस्चार्ज नहीं किया, इसलिए अगर आप अपनी बैटरी चार्ज करेंगे और आप दुनिया में रहेंगे तो आपकी बैटरी को कोई डिस्चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आपके संग में जो आएगा उनकी बैटरी भी चार्ज होने लगेगी, या उनको भी वो सुकून मिलेगा, या उनको आपके जीवन से वो प्रेरणा प्राप्त होगी कि मैं भी अपनी बैटरी को चार्ज करूं। और इस तरह से हर एक अपनी बैटरी को चार्ज करने लगे तो दुनिया क्या हो जाएगी? स्वर्गीय दुनिया नहीं हो जाएंगी, सतयुग नहीं आएगा, बहुत जल्दी आ सकता है। बस सबको अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने की जरूरत है। और क्यों चार्ज करना है, ये तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि उसी से आप अच्छी घटनाओं को आकर्षित करेंगे और आपके जीवन में सुकून ही सुकून देने वाली हर एक घटना आएगी। किसको जीवन में सुख नहीं चाहिए, किसको जीवन में आनंद नहीं चाहिए, किसको जीवन में खुशी नहीं चाहिए? है कोई ऐसा कि मुझे नहीं चाहिए? ऐसा कोई कहेगा? हर कोई को चाहिए, लेकिन तरीका क्या अपनाया? सोचता है मनुष्य हम दादागिरी करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, लोगों को दबा के चले तो हम सुख मिलेगा, तो सुख नहीं मिलेगा। नकारात्मक प्रकृति से कभी भी सुख को हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी सकारात्मक प्रकृति होगी, जितनी हमारी बैटरी चार्ज होंगी सातों गुणों से, स्वधर्म के आधार पर जीवन जिएंगे, उतना हमारे जीवन के अंदर सुकून, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, सब कुछ अनुभव होगा। इसीलिए जीवन के हर युद्ध के अंदर विजयी होना है तो आत्मा के ये सातों गुणों को लेकर के काम करके देखो कैसा होगा, उससे फायदा क्या? तीन बहुत बड़े फायदे हैं, तीन बहुत बड़े फायदे। कौन से फायदे? सबसे पहला फायदा है कि हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा फायदा, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, और तीसरा फायदा, वातावरण को बदल सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात मुझे याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और जब लौटते वक्त लंदन से आ रहे थे, तो लंदन में एक सभा का आयोजन किया था जिसको संबोधित करना था। लेकिन जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को सबसे नीचे रखा, बाकी सारे धर्म पुस्तकें ऊपर रखा, टॉप पर बाइबल रखा, और बड़ी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल अभी टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था, नकारात्मक प्रकृति वाला व्यक्ति होता था, नकारात्मक सांचे वाला व्यक्ति अगर चित्त वृत्ति वाला वहां होता था तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन? गुस्सा करता था, तोड़फोड़ चालू कर देता था, मारपीट आरंभ कर देता था, सारी पुस्तकों को फाड़ना चालू कर देता था, और उसका इंपैक्ट सारे न्यूज़पेपर्स में क्या आता था, गीता का अपमान हुआ और इतना तोड़फोड़ हुआ, इतना मारपीट हो गई, इतना ये हो गया। और उसका इंपैक्ट भारत में क्या होता था, इनोसेंट लोग मारे जाते थे। ये डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। लेकिन स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे, उन्होंने क्या किया, मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं। लोग हंसने लगे कि ये व्यक्ति को इतना भी पता नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे पुस्तक गिर गए, कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया, आज गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। सारी परिस्थिति बदल गई। कहां वो अपमान करना चाहते थे, कहां इसने परिस्थिति को ही बदल दिया। वो खुद नकारात्मक प्रकृति में नहीं आए, लेकिन उसने परिस्थिति को अधीन कर दिया। नकारात्मक प्रकृति वाला परिस्थिति का शिकार बनता है, लेकिन सात्विक प्रकृति वाला परिस्थिति को अधीन करता है। ये है सबसे बड़ी बात। आप जीवन में क्या चाहते हैं, परिस्थिति के अधीन होना चाहते हैं या परिस्थिति पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो बैटरी चार्ज करने से क्या होगा, स्वामी विवेकानंद की फुल बैटरी चार्ज, तभी वो परिस्थिति को अधीन कर सके, परिस्थिति के शिकार नहीं बने। इसलिए बैटरी चार्ज। इसी तरह महावीर स्वामी जहां जंगल में युद्ध एकदम बैठते थे मेडिटेशन में, पूरे वातावरण को चार्ज कर देते थे, और उस वातावरण को इतना चार्ज कर देते थे कि उस वातावरण में कोई हिंसक प्राणी भी आ जाए तो वो भी अपनी हिंसक प्रकृति को छोड़ करके अहिंसक बन जाता था। ये चार्ज बैटरी का कमाल है। महात्मा बुद्ध जब जाते थे विहार पर और लोगों ने उसको मना किया कि इस गांव से मत जाना, ये जंगल से जब गुजरेंगे तो वहां अंगुलीमल नाम का डाकू रहता है जो हरेक की अंगुलियों को काट काट करके हार बना करके पहनता है, इसीलिए वहां से मत जाइए आप। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और चल दिए। उसको अपनी प्रकृति के ऊपर इतना विश्वास था कि उसका ऊर्जा का प्रभा मंडल इतना सकारात्मक है कि उसके संपर्क में अगर वो व्यक्ति भी आएगा तो वो अपनी नकारात्मक प्रकृति को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और यही हुआ कि अंगुलीमल ने अपनी हिंसक प्रकृति को छोड़ दिया, वो भी अहिंसक हो गए। तो व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तन करना है तो आप अपनी बैटरी को फुल चार्ज करो। कौन कहता है कि वो नहीं बदलते हैं? कई लोग हमें कहते हैं बच्चों को कैसे बदला जाए, बच्चों को कैसे अच्छा बनाया जाए। हम यही कहते हैं आप अपनी बैटरी चार्ज करो, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। आप अपना घर का वातावरण ऐसा सकारात्मक बना देंगे जो बच्चे अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। आपको नकारात्मक बनना है, गुस्सा करना है, क्रोध करना है, हम डांटना है, ये करना है। जितना आप नकारात्मक चित्तवृत्ति को अपनाते हैं वो बच्चे वो भी नकारात्मक बनते जाते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है आपके घर में। आप अगर बच्चों को सुधारना चाहते हैं आप खुद सुधर जाओ, आप खुद अपनी प्रकृति को सकारात्मक बना दो। देखो बच्चे सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं, वो आपके प्रभा मंडल से वो भी प्रेरित हो जाएंगे, वो भी अपने अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को भरने लगेंगे। बहुत जल्दी बच्चे उस प्रभा मंडल में उस ऊर्जा को कैच करते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक होंगे तो आपके बच्चे कभी सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज जागृति है समाज के अंदर, बी पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कोई नकारात्मक तरीके से दूसरों को सकारात्मक बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, तो कहां से होगा? सोचने की बात है कि नकारात्मक तरीके से कभी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ सकता है। इसीलिए सकारात्मकता माना स्वधर्म के आधार पर जीवन का संघर्ष हमेशा आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। ये भगवान अर्जुन को कहते हैं। और इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य, इतनी पोटेंशियल है आत्मा में, तुम भयभीत क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है, इसके सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं है जो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। नकारात्मकता से क्या हासिल होता है? पाप ही मिलेगा। सकारात्मकता से कभी पाप नहीं होगा इकट्ठा। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। और फिर आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदि तुम इस युद्ध में मरोगे, मान लो कि जीवन के संघर्ष करते करते ये शरीर छूट भी गया, तो सकारात्मक प्रकृति तुम्हें स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति कराएगा। और युद्ध में जीतोगे, जीवन के हर संघर्ष में जीतोगे, तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। कितनी सुंदर बात कही है, पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है, हमारे अंदर है यह युद्ध, बाहर नहीं है, अहिंसक युद्ध है ये। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वह स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त कर लेता है। इतनी ऊंची प्राप्ति भगवान बताते हैं कि जीवन के संघर्ष में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने में प्राप्ति क्या है? तो इतनी ऊंची प्राप्ति है कि अगर मान लो कि संघर्ष करते करते शरीर छूट भी गया तो भी देव पद को ही प्राप्त करेंगे, और नहीं तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगेंगे। फिर उसके आधार पर भगवान कर्म योग बताते हैं अर्जुन को और कहते हैं, इस कर्म के द्वारा तुम कर्म के बंधन से छूट जाओगे। इस कर्म माना ये सातों गुणों के आधार पर, स्वधर्म के आधार पर जो तुम कर्म करोगे, तो ये सात्विक गुण इतने अच्छे हैं जो तुम्हें कभी कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे, तुम हर बंधन से भी छूट जाओगे। है ना, कितनी ऊंची बात है। कर्म बंधन में बांधने वाला कौन? पर धर्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत, ये हमें बंधन में बांधता है। ये सातों गुण हमें बंधन से मुक्त करता है। सातों गुण को तुम अपने कर्म में ले आओ तो कर्म बंधन मुक्त जीवन, कर्म बंधनों से मुक्त जीवन कितना सुंदर होगा, कितना ऊंचा होगा। फिर उसके बाद दूसरी बात भगवान कहते हैं, इसमें बीज का नाश नहीं होता है। ये बीज इतना पावरफुल है, सातों गुणों के आधार पर किया गया कर्म, ये बीज इतना पावरफुल है कि उस बीज का नाश नहीं होता है, और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं कि उसको नष्ट कर सके। प्रकृति के पास भी उसका उपाय नहीं है, इतना पावरफुल ये बीज है। सात गुणों के आधार पर कर्म करना, इसको ही यथार्थ कर्म योगी कहा गया है। कर्म योगी माना क्या और कर्म बंधनी माना क्या? कर्म बंधनी माना जो सात अवगुण को लेकर कर्म करता है वह कर्म बंधनी आत्मा है, और कर्म योगी जो सातों गुणों के आधार पर कर्म करता है वह कर्म योगी हो जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस कर्म से संपादित धर्म, इस कर्म से, कौन से कर्म से? ये सातों गुणों के आधार पर किए गए कर्म से संपादित धर्म, धर्म यानी जो पुण्य अर्जित करते हैं, उस धर्म से, उस स्वधर्म से जो तुम कर्म करेंगे, उस स्वधर्म रूपी कर्म से जो पुण्य को अर्जित करेंगे, ये जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय। क्यों? लोग बहुत डरते हैं, मृत्यु से डर हर एक को लगता है। अगर कोई बीमारी आई, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, कुछ भी करो, मरना नहीं चाहता, है ना? क्यों मरना नहीं चाहता है? क्यों मरना नहीं चाहता है? क्योंकि मनुष्य जानता है कि जीवन पर्यंत मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं जितने पाप कर्म किए हैं, और इसलिए उस पाप कर्म के कारण पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, ये सुख सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर यहां से शरीर छूटा और जाना पड़ा तो पता नहीं कौन सी गति को प्राप्त करूंगा, कम से कम इस जन्म में है थोड़ा दुख भोग लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये सुख सुविधा तो है मेरे पास। इसलिए मनुष्य मरना नहीं चाहता है। लेकिन ये सातों गुणों के आधार पर किया गया कर्म, उससे जो पुण्य अर्जित होता है वो इस भय से भी हमें मुक्त कर देता है, क्योंकि हमें मालूम है हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अगर ये जन्म छूटेगा तो इससे और अच्छा जन्म मिलेगा, ये गारंटी है। तो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वधर्म के आधार पर कर्म करो। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बस इसमें एक बात चाहिए, ये कर्म करते समय एक बात चाहिए, कौन सी? कि इसमें निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म कर, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म कर, संशय बुद्धि रखकर कर्म नहीं कर कि पता नहीं मैं अच्छा कर्म तो कर रहा हूं लेकिन क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरी कमजोरी तो नहीं सोचेंगे। संशय करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा कर्म कर, देखो फिर कैसा अच्छा फल। निश्चय बुद्धि होकर कर्म करना, कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं अर्जुन को। तो कर्म योगी जीवन किसको कहा जाता है? ये सातों गुणों के आधार पर जब कर्म का आचरण करते हैं तो पहली बात, कर्म बंधन से छूट जाएगा। दूसरी बात, प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं इस बीज को नष्ट करने का। तीसरी बात, जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। और चौथी बात, निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म कर। ये है यथार्थ कर्म योगी जीवन, ये है यथार्थ कर्म योगी। कितनी सिंपल सरल भाषा में भगवान ने कर्म योगी बता दिया। एक बार मेरा कार्यक्रम था और कार्यक्रम का शीर्षक था राजयोग। तो हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभव बैठे थे, और उस महानुभाव ने अपने प्रवचन में आरंभ किया कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपना कर्म अच्छा करते हैं, अपने परिवार को अच्छा पालते हैं, अपने परिवार को अच्छे संस्कार देते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अपना कर्म निष्ठापूर्वक करते हैं, यही हमारा कर्म योग है। उन्होंने अपना भाषण पूरा करने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या यही कर्म योग है। और तब ये गीता का अध्ययन किया और पता चला कि भगवान ने कर्म योग की व्याख्या तो कितनी ऊंची बताई है। खाली अपना कर्म निष्ठा से करना, ईमानदारी से करना, या अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना, यही कर्म योग नहीं है। वो तो प्राणी भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आज एक पक्षी भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही है, दाना लेके आती है, उसको अच्छी परवरिश देती है, उड़ना सिखाती है, निष्ठा से कर रही है अपना कार्य। अब पशु भी, आज एक कुत्ता भी बहुत वफादारी से अपना कार्य कर रहा है, घर में अपने बच्चों को वो भी अच्छे परवरिश देता है, क्या वो भी कर्म योगी हो गए? अगर मनुष्य होकर के भी इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने देने के बाद भी हमने इतना ही किया तो क्या फायदा? इसीलिए कर्म योग का मतलब कितना सुंदर भगवान ने बताया कि सातों गुणों के आधार पर कर्म करना और निश्चयात्मक बुद्धि से वो कर्म करना, वो हमें अनेक प्रकार की उच्च प्राप्ति के अधिकारी बनाती है। ये यथार्थ कर्मयोगी जीवन है, सातों गुणों के आधार पर, स्वधर्म के आधार पर कर्म करना, ये है कर्मयोगी जीवन। फिर आगे भगवान ने बहुत अच्छी बात कही और कहा कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। बहुत सुंदर ये गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। क्यों नहीं करें? आजकल तो हर बच्चा भी कर्म से पहले फल की चिंता करता है। आज एक बच्चे को आप कहो इतना काम कर दो तो कहेगा मुझे क्या मिलेगा। आप उसको काम कराने के लिए भी कहना पड़ता है, अच्छा एक चॉकलेट दूंगा, तब करता है वो। बिना चॉकलेट के, बिना फल के वो भी कर्म नहीं करता है। वहां तक कि अगर मान लो के परिवार के अंदर माँ किसी काम में व्यस्त हो गई और उसका पति आया, तो माँ ने बच्चे को कहा, जा अपने पिता को एक गिलास पानी तो दे दे बेटा। बच्चा होमवर्क कर रहा था या जो भी अपना काम कर रहा था, सब छोड़ करके पानी का गिलास लेकर के जाता है पिता के पास, पानी देता है, और पिता अपने टेंशन में है। उसने बच्चे को ये नहीं कहा शाबाश बेटे थैंक यू, इतना नहीं कहा। दूसरे दिन जब वो आता है और माँ कहती है बेटा पानी का गिलास ले जा, ले जाएगा? ले जाएगा? पहले दिन थैंक यू मिला ही नहीं तो दूसरे दिन मैं क्यों ले जाऊं? तो बच्चा भी कहेगा मैं बिजी हूं, होमवर्क कर रहा हूं, आप ही दे दो, कहेगा कि नहीं कहेगा? और गीता में भगवान कहते कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि भगवान ये कहना चाहता है कि हर कर्म के साथ उसकी परछाई के रूप में वह फल जुड़ा हुआ है। इसीलिए तुम अच्छा कर्म करो तो तेरे को फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम स्वधर्म के आधार पर कर्म करो तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो परछाई तेरे पीछे पीछे ही आएगी। लेकिन परछाई को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो कभी भी परछाई हाथ में नहीं आती है। एक व्यक्ति को कहा तो चलता जा और अपनी परछाई को पकड़ कर ले आओ, न सूर्य की रोशनी मिली न परछाई हाथ में, चलता रहा सारा दिन, चलता रहा, परछाई को पकड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन एक समझदार व्यक्ति सूर्य के तरफ मुख कर देता है, मुड़ जाता है और चलना आरंभ कर, परछाई कहां जाएगी? पीछे पीछे आएगी। बस इतना ही तो करना है। वो बहुत सुंदर बात एक याद आती है मुझे कि एक बार लक्ष्मी जी और शनि के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों कहे कि भाई मैं बड़ी, लक्ष्मी कहे मैं बड़ी, शनि कहे मैं बड़ा। अब दोनों ने सोचा कौन फैसला करे हमारा, तो दोनों विष्णु जी के पास गए कि भाई आप हमारा फैसला करो, हम दोनों में बड़ा कौन। अब विष्णु जी के लिए तो मुसीबत हो गई, लक्ष्मी जी को कहे कि तुम बड़ी है तो शनि चौकड़ी मार के बैठ जाए, और शनि को कहे तो लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएगी, तो क्या करे। तो विष्णु जी ने कहा अच्छा मैं सोचता हूं कि आप दोनों में बड़ा कौन है, तब तक वो पोल के पास जाकर के हाथ लगाकर वापस आओ। लक्ष्मी और शनि दोनों चलते हुए गए और पोल को टच करके वापस आए, तो विष्णु जी ने कहा जाते समय तो शनि अच्छा लग रहा था, आते समय तो लक्ष्मी अच्छी लग रही थी। सही बात है, जीवन में लक्ष्मी आते ही अच्छी लगती है, शनि जाते ही अच्छा लगता है। लेकिन शनि क्यों आता है? क्योंकि जब व्यक्ति के कर्म नकारात्मक है तो शनि की प्रवेशता होनी ही है, और तब व्यक्ति की परछाई पर भी उसको भरोसा नहीं होता है, इसलिए फल की चिंता पहले करता है। क्योंकि शनि जो ग्रह में बैठ गया है, और जब शनि बैठा है तो मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही है, इसलिए फल की चिंता पहले करता है कि ये कर्म करने जाऊं तो फल क्या मिलेगा, पहले फल चाहिए, फल बताओ फल क्या होगा तो मैं ये कर्म करूं। लेकिन भगवान कहते हैं अच्छे कर्म कर, स्वधर्म के आधार पर कर कर्म, तो लक्ष्मी जी ही लक्ष्मी जी तुम्हारे जीवन में होंगी, यानी अच्छी बातें ही होंगी, तुम्हें फल की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आगे फिर कर्म योग का मतलब भगवान बहुत सुंदर बताते हैं और कहते हैं उसको कि आसक्ति और संग दोष, इन दो चीजों से स्वयं को दूर रखना। आसक्ति और संग दोष, कर्म करते हुए ये दो चीजों को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर, ये समत्व भाव ही तो योग कहलाता है। आसक्ति और संग दोष है ना, संग के प्रभाव में आए तब व्यक्ति बुरे कर्म में लग जाता है, कुसंग। इसीलिए कहा संग तारे कुसंग डुबोए, तो कुसंग के प्रभाव में नहीं जाना और आसक्ति के वश नहीं होना। सिद्धि असिद्धि में समान भाव, सिद्धि मिली तो भी ठीक, असिद्धि मिली तो भी ठीक, योग में स्थित होकर। योग माना क्या, यहां भगवान बताते योग माना बैलेंस। जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। कोई भी कर्म करो, ये सातों गुणों के आधार पर भी कर्म करो तो बैलेंस के साथ करो। संतुलन जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, और जब संतुलन में स्थित होकर के निष्काम कर्म करेंगे तो ये समत्व भाव, ये संतुलन योग कहलाता है। योग का मतलब ही क्या है? योग माना आसन और एक्सरसाइज नहीं, योग माना जीवन में संतुलन, समत्व भाव लेकर के आना, बैलेंस के साथ कर्म करना, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया। फिर आगे भगवान कहते हैं इस समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। समत्व बुद्धि के साथ आप कर्म कर रहे हैं, उसकी पहचान क्या? तो हर आचरण में कौशल कुशलता होगी, कौशल होगा, व्यवहार कुशलता, संबंधों में कुशलता, हर बात में कौशल, ये प्रमाण है कि हाँ बैलेंस के साथ चल करके उसने कर्म का आचरण किया है। तो समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण, उसके निशाने क्या? कौशल ही योग है, यही योग है। योग में स्थित होकर के कर्म योगी बन के कर्म कर रहा है, उसका प्रमाण कुशलता, कर्म कुशलता, व्यावहारिक कुशलता, बौद्धिक कुशलता, हर प्रकार की कुशलता, ये योग है। इसी का नाम है योग, कि ये बैलेंस से चल रहा है जीवन के अंदर। फिर आगे भगवान कहते हैं, यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त करेगा। स्वामी विवेकानंद उस अमृत पद को प्राप्त हो गए, अमर हो गए। कहने का भावार्थ के वो आत्माएं अमर हो गई। अमर कैसे हो गई? तो ये विचलित बुद्धि को वश किया समाधि के माध्यम से, योग के द्वारा उसको स्थिर किया, और तब वो योग की पराकाष्ठा, जब जीवन के अंदर कर्म योगी बनता है तो वो कर्मों का प्रभाव ही समाधि में बैठते समय भी पड़ता है। जिन दिन भर में बुरे कर्म करते रहो, गाली गलौज करते रहो, और वो व्यक्ति समाधि में बैठना चाहे, उसका मन स्थिर होगा? कभी नहीं होगा। मन को स्थिर करने के लिए दिनचर्या पर भी ध्यान देना जरूरी है। दिनचर्या अच्छी हो हमारी, कर्म कुशलता जीवन के अंदर हो, बैलेंस के साथ चलो, फिर आप देखो कि जब ध्यान करने बैठेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। आज मनुष्य की शिकायत ये रहती है, मन स्थिर नहीं होता है, मन बहुत भटकता है, मन बहुत विचलित होता है। क्यों विचलित हो रहा है, क्यों भटक रहा है? क्योंकि हमारे दिनचर्या के अंदर कर्म कुशलता नहीं है, कर्म में अशुद्धियां हैं, कर्म में कई लोगों को हमने दुख दिया है, तो उनके दुख के वाइब्रेशन मेरी बुद्धि को स्थिर होने नहीं देता है। ये प्रभाव है, मेरी बुद्धि को भी विचलित करेगा। और जिस समय ये विचलित बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाए, यानी कर्म कुशलता आ जाए जीवन में, व्यावहारिक कुशलता आ जाए, बौद्धिक कुशलता आ जाए, तो बुद्धि स्थिर हो जाएंगी, तब योग की पराकाष्ठा उस अमृत पद को प्राप्त कर लेंगे, जीवन के अंदर अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। क्या आपके जाने के बाद भी लोग याद करते रहेंगे, ये व्यक्ति था, बहुत सुंदर जीवन था, बहुत लोगों के साथ जब भी बैठता था उसके साथ बैठने में भी सुकून मिलता है। कई बार आपने कई लोगों के साथ देखा होगा, किसी के साथ बैठते हैं, बातचीत भले नहीं होवे, लेकिन बैठने में भी एक सुकून का अनुभव होता है, और किसी के साथ बैठने का मन ही नहीं करता है। जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं तो अपना रास्ता कहीं और निकाल लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों भागने का प्रयत्न करते हैं? फिर भले हम कोई भी कारण दे दें, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा इतनी है जो हमें उसके पास बैठने का मन नहीं होता। नकारात्मकता के पास किसको बैठने का मन होगा? इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात करता रहेगा तो किसको बैठने का मन भी करेगा? लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा वाला है उसके साथ में बैठने का भी मन करता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो इसलिए वो अमर पद को प्राप्त कर लेता है। और फिर आगे भगवान स्थित प्रज्ञ होने की विधि बताते हैं और कहते हैं स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है। तो कहते हैं, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों का त्याग देता है, तब वह आत्मा से ही आत्म में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। आत्मतृप्त महापुरुष उसको कहा। जीवन के अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत महत्व रखता है। आज मनुष्य जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, जीवन जी रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं, ढो रहे हैं, जीवन को ढो रहे हैं, जी नहीं रहे। ढोने का क्यों? क्योंकि आत्मसंतुष्टि नहीं है। लेकिन अगर यथार्थ कर्मयोगी बने तो आत्मसंतुष्टि आने लगती है, और उस आत्मसंतुष्टि से उसकी स्थित प्रज्ञता, बुद्धि प्रज्ञमानस बुद्धि स्थिर होने लगती है। और ऐसा आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दूसरी विशेषता भगवान बताते कि जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रिय को समेटकर उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है वही स्थित प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति और अंतर्मुक्ता की धारणाएं आत्म अनुभूति से होती है। आप मंदिर में जाएंगे ना, शिव के मंदिर में, तो बाहर तो नंदी बैठा होता है, लेकिन जब आप द्वार से अंदर जाते हैं शिव के लिंग के तरफ, तो उस दरवाजे पर कछुआ रखा होता है और उस कछुए को भी प्रणाम करते हुए फिर अंदर जाते हैं। कछुआ ही क्यों रखा वहां पर? कछुआ हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कछुआ जो है कर्म करना है तो अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाता है, और जब कर्म पूरा होता है तो संकीर्ण लेता है, सेफ हो जाता है। इसी तरह कर्म योगी अपनी कर्मेंद्रियों को विस्तार में भी लाता है कर्म करना है तब, लेकिन जब देखता है कि चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बनता जा रहा है तो अपने आप को संकीर्ण लेता है, सेफ कर देता है। यह सीखना है, अंतर्मुखी हो जाता है, अपने इंद्रियों को समेटना जानता है। तो यथार्थ कर्मयोगी का मतलब कछुए की तरह वो अपनी इंद्रियों को संकीर्ण लेन इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है। लेकिन आज की दुनिया में फेंगशुई के हिसाब से सब एक दूसरे को कछुआ भेंट करते हैं और क्या कहते हैं, गुड लक आता है ये कछुआ लो, गिफ्ट के रूप में देते कछुआ। कई लोग फेंगशुई के हिसाब से कछुआ भेंट करने लगे। आजकल मार्केट में बहुत कछुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हर कोई एक दूसरे को गुड लक कहते, इससे गुड लक आता है। अब कछुआ भेंट करने से गुड लक थोड़ी आता है, प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन को कछुए की तरह बनाना है कि ऐसे जब विकृतियों को देखते हैं वायुमंडल के अंदर, नकारात्मकता को देखते हैं, तो अपनी इंद्रियों को संकीर्ण लो, समेट लो, तो गुड लक आएगा। बुरी प्रकृति में, बुरी प्रवृत्ति में अपने को संलग्न मत करो, तब गुड लक आएगा। अगर आप बुरी प्रवृत्ति के अंदर अपनी इंद्रियों को इन्वॉल्व कर, कोई किसी की ग्लानि कर रहा है ईर्ष्या के वश, और वहां बैठकर हमने भी ग्लानि करना चालू कर दिया, हाँ हम भी जानते हैं, अब इसको क्या कहेंगे, गुड लक आएगा उसको, कितने भी कछुए भेंट कर दो, गुड लक नहीं आता है। गुड लक तो तभी आए जब जीवन को ऐसा बनाया जाए। तो स्थित प्रज्ञता किसको कहा जाता है, स्थिर बुद्धि वाला किसको कहा जाता है, जो कछुए की तरह हो, जीवन ऐसा बन जाए तो कितना गुड लक होने लगेगा सोचो। फिर आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये मनुष्य की बुद्धि योग भ्रष्ट क्यों हो जाती है, तो भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, ये चाहिए वो चाहिए, कामना उत्पन्न है। रास्ता बता रहा है किस तरह व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है। तो विकृति का चिंतन करने वाला विकृति में आसक्त हो जाता है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध की उत्पत्ति होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अविवेक जागृत होता है। क्रोध में आकर मनुष्य क्या बोलता है उसको कोई समझ नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई भी शब्द अविवेकी शब्द उच्चारण करने लगते, बाद में उसको आप कहो कि भाई गुस्से में आकर ऐसे ऐसे शब्द थोड़ी बोलना चाहिए तुमको, क्या कहेगा, मैंने थोड़ी बोला, मैं ऐसा कब बोला, उसको ये भी होश नहीं कि कब बोला उसने। तो क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भी नहीं रहती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग ही बुद्धि योग कहा जाता है। बुद्धि की सलामती चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो इस रास्ते पर भटकना नहीं है। कौन सा रास्ता? विकृति से, विकृति में आसक्त हो जाते हैं, विकृति का चिंतन किया तो विकृति में आसक्त हो गए, आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो गई, और स्मृति शक्ति भ्रमित हो गए तो योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती, वो व्यक्ति की बुद्धि योगी नहीं होता है, उसका बुद्धि योग ईश्वर के साथ कभी लग नहीं सकता है। कितनी सुंदर बात कही। और अंत में इस अध्याय में बहुत सुंदर बात फिर भगवान कहते हैं कि जब ऐसे इंद्रियों के वश, विकृतियों के वश विकृति का चिंतन क्यों करता है, तो जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है, विवेक खत्म हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत है, और ये विकार जैसे पानी पर तैर रही किश्ती को बहा कर ले जाते, ऐसे हमारे जीवन को भी एक ऐसे बहाव में ले जाती है जिससे विवेक को हर लेता है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसीलिए कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार बहुत आवश्यक है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर समाया रहता है। कितनी सुंदर बात कि ज्ञान चाहिए, ये बुद्धि को वश करने के लिए, कर्मेंद्रिय को वश करने के लिए कोई जबरदस्ती दमन नहीं करना है, लेकिन ज्ञान से ही, ज्ञान की धारणा करनी होती है, और उस ज्ञान से ही कर्मेंद्रियों को जीत सकता है। और तब अंत में भगवान कहते हैं, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती है। योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती, इसलिए योग साधना जरूरी है। उसके अंतकरण में भाव नहीं है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं, अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। तो योग माना क्या? योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। योगा इज द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। परेशान मन वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है, और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए योग माना अपनी कर्मेंद्रिय को सुसंस्कृत करना। तो यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल आगे देखेंगे, कल सुबह के सत्र में हम योग का मुख्य आधार परम शक्ति परमात्मा का परिचय देखेंगे, और शाम के सत्र में कर्म योग को और विस्तार से देखेंगे कि भगवान ने कर्म योग की गहराई कहाँ तक बताई है, उसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। आज ये दूसरा अध्याय जिसमें बुद्धि योग, कर्म योग, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञता और स्वधर्म के विषय में, आत्मा की शाश्वतता के बारे में आज हम सभी ने बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त किया। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम सभी बैठेंगे, योग साधना करेंगे, योग के विषय में इतना सुना है, तो साधना करते ही जाए तो कम से कम उसका जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि को और सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को एक शुद्ध संकल्प देते हैं आत्मचिंतन के। महसूस करें अपनी वास्तविकता को, और स्वयं को देखें, मैं आत्मा अति निर्मल पवित्र शुद्ध स्वरूप में हूं, यही मेरी वास्तविकता है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं, मेरा स्वधर्म शांति है। अपने मन की गति को शांत करती हूं, शांति मेरा गुणधर्म है। अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस करती हूं। सुख समाया हुआ है, इसी शांति में सुकून है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप, इसी शांति में शक्ति है। स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म का आचरण करना है। इस स्वधर्म के सांचे में अपनी चित्त वृत्तियों को स्थिर करना है। कर्म का आचरण करते हुए यथार्थ कर्मयोगी बनना है। कर्म द्वारा सर्व बंधन से छूटते जाएंगे। जन्म मृत्यु रूपी महान भय से मुक्त हो जाएंगे। इस स्वधर्म के आचरण से संपादित पुण्य जीवन के चारों ओर का प्रभा मंडल सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और समत्व भाव के साथ हर कर्म के आचरण में कर्म कुशलता, व्यवहारिक कुशलता को सकारात्मक ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करने देती हूं और इस ऊर्जा को हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में प्रवाहित होने देती हूं। ओम शांति। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। ओ शांति। अभी इसी शांति को अपने साथ लेकर के आप सभी शांति में यहां से प्रस्थान करते हुए जाएंगे तो नींद भी रात को बहुत अच्छी आएंगी और इसी शांति को बनाए